तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
ओम शांति। आर्ट ऑफ सस्टेनेंस में सीरीज में कल हमने स्वयं की पालने के बारे में सुनी और हमने स्वयं की पालना की होगी। जब व्यक्ति के स्वयं की पालना जब हो जाती है तो दूसरों की पालना करनी होती है। दूसरों को किसको करेंगे? बड़े तो हमारी पालना कर रही है, इसलिए हमें छोटों की पालना करनी है करनी है। आज का टॉपिक है कि हम छोटों की पालना कैसे करें। पालना का अर्थ होता है किसी का भरण पोषण करना, किसी का ध्यान रखना, किसी की जिम्मेवारी उठाना, जरूरत के समय मदद करना, केयर करना, उनके जीवन के लिए सपोर्ट बन के रहना, इसको ही पालना कहा जाता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को पालना करते हैं, ध्यान रखते हैं, कैसे सोएंगा, कैसे उठेंगा, कैसा कपड़ा चाहिए, कौन सी स्कूल में इनका अच्छा पढ़ाई होगा, कैसा ट्यूशन, कैसा भोजन, क्या चीज बच्चों को अच्छा लगता है, पूरा ही ध्यान रखते हैं, पूरा ही पालना करते हैं। साथ साथ माता पिता बच्चे गलत संग में न जाए उसका भी ध्यान रखते हैं। वैसे ही टीचर अपने स्टूडेंट का श्रेष्ठ शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आगे से आगे बढ़े उसके लिए पढ़ाई के द्वारा पालना करते, गुरु अपने शिष्य का पालना करते, देश का नेता देश की संभाल करते, पालना करते, समाज से भी समाज का, और पशु पालक पशु का, डॉक्टर पेशेंट का, डॉक्टर आप हैं, ऐसे पालना करते और पालना देते और पालना लेते व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। राजा प्रजा का, लेकिन राजा भी नहीं है, इसलिए देश का नेता देश की जनता को पालना करते। और सीमा में जो सुरक्षा कर्मी है, वो सुरक्षा कर्मी अपने नींद को त्याग करके हमारी जीवन की रक्षा करती, वह भी एक प्रकार की पालना है। वैसे पालना की बहुत सारी मेथड निकल सकती है, लेकिन अभी हम मुख्य रूप से चार प्रकार से पालना की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पालना को इंग्लिश में सस्टेनेंस कहते हैं, और पहली पालना है समाज के द्वारा पालना। जिस समाज में रहते हैं उस समाज के समाज से भी उन्हें जरूरत के समय मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और समाज में रहने वाला व्यक्ति भी एक दूसरे को जरूरत के समय किसी ने कोई चीज से तो किसी ने कोई चीज से एक आपस में मदद करके आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो बहुत ही मेहनत करके उनकी समस्या से बाहर निकालते हैं और अपने जीवन को सरल रूप से जीते हैं। अगर व्यक्ति समाज में मिलके नहीं चलते हैं, अलग होकर रहते हैं, तो उनको जीवन जीना बहुत कठिनाइयां मुश्किल होती है, बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है। समाज के कोई रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, मर्यादे होते हैं, उस मर्यादा से व्यक्ति अपने कई सारे बुरे कर्म करने से बच जाते हैं। यह है समाज के द्वारा मिलने वाली पालना। दूसरा है आर्थिक पालना। जीवन यापन करने के लिए, जीवन के कोई भी क्षेत्र में जाने के लिए व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है। कहा जाते भूखे भोजन न हुए है गोपाला, लेला बाबा अपना कंठी माला। जब तक आर्थिक नहीं है तब तक कुछ भी नहीं काम चलता है। आज के समाज में, आज के देश में, आज के गांव में, आज के विश्व में बहुत से ऐसे लोग हैं कि बहुत बड़ी बीमारियां हैं, उनको इलाज करने के लिए अच्छे हॉस्पिटल में पैसा नहीं है, अच्छे डॉक्टर से मिलने के लिए पैसा नहीं है। अगर डॉक्टर से मिल भी गए, हॉस्पिटल चले भी गए, तो मेडिसिन खरीदने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए, जांच के लिए पैसा नहीं है। इसलिए पैसा की बहुत ही जरूरत है। पढ़ाई में अभी भी हमारे देश में, समाज में, गांव में पढ़ाई के लिए अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको स्कूल का फी देने के लिए, अच्छे कोचिंग के लिए, अच्छे ट्यूशंस के लिए उनके पास पैसा नहीं है। जिसके बदौलत, जिसके परिणाम वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति, जिस जो चाहता है वो नहीं कर पाता है। ऐसे भी व्यक्ति है हमारे समाज में, परिवार में, देश में, उनको पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है, भोजन के लिए, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए अच्छे घर नहीं है, ऐसे स्टेशन पे, बस स्टैंड में सोते हैं और जीवन बिताते हैं। इसीलिए कोई भी क्षेत्र में अगर व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो आर्थिक मजबूती बहुत ही जरूरी है, आर्थिक सबलता होना अति आवश्यक है। इसीलिए आर्थिक पालना भी बहुत ही जरूरी है। तीसरी है, व्यक्ति के पास सामाजिक सपोर्ट भी रहता है, आर्थिक भी रहता है, लेकिन मन से कमजोर है, मन से अकेला रहता है। रहता है घर में, परिवार में, पूरा फैमिली के साथ रहता है, समाज में रहता है, ऑफिस में रहता है, लेकिन हमेशा कोई उनको असुरक्षित महसूस होता है, भय रहता है जीवन में उनको, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे बारे में क्या षड्यंत्र रच रहा है, ऐसे सोचते रहते हैं, मन में विचार चलता रहता है। क्योंकि मन के अंदर में ताकत नहीं, उस ताकत नहीं व्यक्ति के अंदर की उससे हम निकल पाए। ऐसे समय पर ऐसे व्यक्ति को मन के उलझे हुए गुथरी को, उलझे हुए गांठ को सुझालने के लिए हमें मदद करने की जरूरत है, उनकी समस्याओं को दूर करने की जरूरत है, मन को हल्का करने की जरूरत है। नहीं तो धीरे धीरे व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, बात को सप्रेस करते करते। इसीलिए उस मन जो भारी हो गया है, मन जो अकेला हो गया है, मन जो परेशान हो गया है, दुविधा में फंस गया है, उलझ गया है, तो उससे भी हमें निकालना है। अगर हमसे नहीं होता है तो हम किसी के द्वारा करवा सकते हैं, काउंसलिंग सेंटर में जाके काउंसिल करवा सकते हैं, कुछ मेडिसिन की जरूरत है तो उनको मदद करके मेडिसिन दिलवा सकते हैं, तब हम मानसिक पालना कर सकते हैं, उस मानसिक में फंसे हुए व्यक्ति को हम निकाल सकते हैं। चौथी सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक पालना, जो एक योगी ही कर सकते हैं, वो परमात्म शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। आध्यात्मिक पालना की अति आवश्यक है वर्तमान समय, क्योंकि वर्तमान समय हर व्यक्ति विकारों के दलदल में फंसे हुए हैं, काम की धधकता हुआ आग में जल रहा है इंसान, ईर्ष्या द्वेष की उलझन में उलझे हुए है व्यक्ति, देह अभिमान के बदबू से दुर्गंध दे रहा है। इसीलिए ना चाहते हुए व्यक्ति कुकर्म, पाप कर्म, बुरा कर्म कर लेते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी किसी में अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, चटक जाते हैं, रास्ता से भटक जाते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, करना क्या है, क्या नहीं करना है उनको व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। इसीलिए वर्तमान समय आध्यात्मिक पालना की जरूरत है। व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा स्वदेश क्या है, मैं किस लक्ष्य से आया था, वो व्यक्ति भूल गए हैं, लक्ष्य से भ्रमित हो गए हैं व्यक्ति। इसीलिए वर्तमान समय आध्यात्मिक पालना की जरूरत है। आध्यात्मिक पालना के द्वारा व्यक्ति उस पिता परमात्मा का परिचय दे सकते हैं, स्वयं का परिचय दे सकते हैं, स्वदेश का परिचय दे सकते हैं, स्वलोक से की जानकारी दे सकते हैं। जब स्व की जानकारी होगी, स्व की पिता की जानकारी होगी, स्वलक्ष्य का जानकारी होगा, स्वदेश का जानकारी होगी, तो विकारों के दलदल से निकलना सहज हो जाएगा, क्योंकि श्रीमत रूपी रस्सी उनको पकड़ने में आ जाएगी और पिता परमात्मा उस श्रीमत रूपी रस्सी से उनको बाहर खींच लेगा। योग अग्नि से काम की जो धधकता हुआ आग धीरे धीरे शीतल जल बन के, योग की शीतल जल बन के क्या होगा, शांत कर देगा। देह भान की बदबू देही अभिमानी स्थिति से रूहानियत की खुशबू में बदल जाएगी और उनका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। इसीलिए आध्यात्मिक पालना की अति आवश्यक है। लेकिन आज का टॉपिक है अपने से छोटों की पालना कैसे करें। बाबा ने छोटा, जो हमसे आयु में एक छोटा है उनको हम छोटा कह सकते हैं, और जो ज्ञान में हमसे बाद में आए उनको श्रीमत का पता नहीं है, योग का पता नहीं है, धारणा का पता नहीं, मर्यादाओं का पता नहीं है, उनको भी हम छोटा कह सकते हैं। ज्ञान के आधार से, उम्र के आधार से वो हमसे बड़े हैं। बात हमसे तुम कह के उन्हें नहीं करना है, आप ही कहना है, बड़ों की भावना से उनको देखना है, लेकिन समझना है कि इस मार्ग के आधार से थोड़ा छोटे हैं, उनको जानकारी देने की जरूरत है। नहीं, देहाभिमान नहीं आएगा, वो समझ की बात है, आप ला भी सकते हैं नहीं भी ला सकते हैं। बाबा ने हमारी दादियों को कैसे पालना की, हर बात का ख्याल रखा, भोजन का, सोने का, योग का, घूमने फिरने का, हर चीज का ध्यान रखा। जिस समय जिस मौसम में जिस जो मिलता था बाबा बच्चों को उपलब्ध कराते थे, उस समय हलवाई नहीं थी, तो बाबा बच्चों के लिए गुलाब जामुन बनवाने के लिए कलकत्ता से मंगाया हलवाई को और बच्चों को खिलाया। दादियां हमारी कितनी प्यार से पालना कर रहे हैं और की है। दादी प्रकाशमणि से कुमार मिलते थे तो बोलते थे कुमार की दादी कुमार का है, माना कुमार का दादी अर्थात कुमार की दादी है। बहने मिलती थी तो कहती थी दादी टीचर्स का लीडर है इसलिए दादी मेरी है। माताएं बुजुर्ग मिलते थे तो कहती दादी बुजुर्ग है इसीलिए मैं भी बुजुर्ग, तो दादी मेरी है। अधर कुमार कहते थे दादी मेरी है। सभी के मुख से निकलता था दादी हमारी है। क्यों? क्योंकि दादी ने इस तरह से सभी को पालना की, बाबा ने इस तरह से सभी को पालना की, बड़ों ने इस तरह की सभी को पालना की। अभी हमारी बारी है सबको पालना करने की। कैसे हम सबको पालना करेंगे? जैसे बाबा अमृत वेला क्या करते हैं, हम बच्चों को वरदान देते हैं, शक्ति देते हैं, हमें क्या करना है? हमारे अपने से छोटों को वरदान तो नहीं दे सकते, सकाश अवश्य दे सकते हैं। हमें छोटों को सकाश दे के माया से उनको अवकाश दिलाना है। जैसे बाबा मुरली में कहते मीठे बच्चे, हमें दिल से समझना है ये मेरा मीठा भाई, ये मेरी मीठी बहन, ये मेरी मीठी माताजी है। बाबा दिल से समझते ना मीठे बच्चे, ऐसे हमें दिल से समझना, मुंह से कहने की बात नहीं, हमारी भावनाओं की बात है यहाँ पे। अगर हम दिल से समझते हैं मीठे भाई, तो वो भी समझेगा कि ये मेरा मीठा भाई है, ये मेरी मीठी बहन है, ये मेरी मीठी माताजी है। अगर उस समय अगर हम उनको कुछ बात कहते हैं तो उनको दिल में छप जाता है, उनके दिल में लग जाता है, वो स्टाम्प की तरह अमिट हो जाता है और आपकी बात स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसीलिए हमें दिल से स्वीकारना है ये मेरा मीठा भाई है। जैसे बाबा कर्म करते समय हमें कर्मयोगी का पाठ सिखाते और कर्म में मदद करते, वैसे उस नए भाई बहनों को भी हमें कर्म में मदद करना है। जैसे बाबा हमें समस्या के समय मदद करते, उन्हें भी जीवन में आई परिस्थिति समस्या के समय हमें हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है उन्हें मदद करने का। जब कोई कुमार चाहे जब कोई कुमारी चाहे जब जो भी कोई बीमार होता है, हमारी तबीयत ठीक है, हमारा फर्ज बनता है, ये हमारे परिवार है, हमारे भाई है, हमारी बहन है, हमारी माता है, उनका टिफिन पहुंचाना, उनका तबीयत का ख्याल रखना, उनके डॉक्टर से मिलाना, मेडिसिन देना, जरूरत के समय कुछ पैसे की मदद हो तो पैसे की मदद करना, तभी हम पालना कर सकते हैं। उनका जीता जागता उदाहरण हमारे चीमन भाई और संजय भाई मधुबन के थे। ऐसा परिवार, ऐसा भाई, ऐसी बहन हमें कल्प में एक ही बार मिलता है, और हम जितना करते उसके पद्म गुना ज्यादा हमको पुण्य प्राप्त होता है, फल मिलता है, इसीलिए हमें करने में संकोच नहीं करना है। अगर ऐसे हम करते हैं तो छोटे भी हमसे सीख के दूसरों के उनसे जो छोटे आएंगे उनको पालना करके उनका भी भाग्य का दरवाजा खोल सकते हैं, भाग्य बनाने की दरवाजा खोल सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी चिंतन, और अभी थोड़ा सा और देखेंगे कौन सा और हम क्या कर सकते हैं छोटों को पालना करने के लिए। सबसे पहली बात है कि सभी छोटों को पालना देना है, किसी एक को नहीं, अपना भाई अपना बहन को नहीं, अपने सेंटर वालों को नहीं, अपने जोन वालों को नहीं, अपने डिपार्टमेंट वालों को ही नहीं, सबको देना है। पार्शलिटी नहीं करना है हमको, हमारे जोन का आया, हमारे सेंटर का आया, हमारे घर का आया तो बस उनके पीछे ही लग गए, ऐसा नहीं करना है, सबको देना है। वो पीछे लग जाए वो ठीक है, उनको बताना है भाई अभी हमारी सेवा है और भी है आपके पीछे, तो सबको देना है। उसके बाद में यू अर्थात अंडरस्टैंडिंग, समझ से देना है, किसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, चाहिए थोड़ा और हम ज्यादा दे देंगे तो उल्टी कर देंगे, इसलिए जितना क्षमता हो, जितनी कैपेसिटी हो, जितना वो ले सकता है और जिस चीज की जरूरत हो उसे वही देना है। जेब में नहीं रखने की बात होती, जेब में से निकल जाएगा वो, ऐसी चीज है, इसलिए हमें समझ से देना है, इसके लिए हमें समझदारी की बहुत जरूरत है। तीसरी बात है हमारे अंदर यस अर्थात सहयोग की भावना होनी चाहिए, ड्यूटी समझ के नहीं करना है, सहयोग की भावना हो, सेवा की भाव हो, बाबा आके हमके क्या सिखाया, बाबा खुद सेवक है तो हमें भी सेवक बन के बाबा का सपूत बन सबूत देना है, सेवा भावना से करना है। अगर सेवा भाव में से करते हैं तो उनके अंदर भी सेवा भाव पैदा होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। शॉर्ट में लेते हैं टी अर्थात हमको टाइम देना पड़ेगा, किसी भी टाइम, कभी भी, ऐसा नहीं कि इतने बजे से इतने बजे तक, नहीं, अभी मेरा योग का समय है, मेरा भोजन का समय है, मेरा मुरली का समय है, मेरा रेस्ट का समय, नहीं, कभी भी किसी में समय उसको हमें मदद करनी है तो करनी है, वो पता चल जाता है, वो पता एक बारी दो बारी करेंगे तीसरी बार तो पता चल ही जाता है कि नहीं ये इसे तंग करने के लिए आए, ये अपना मतलब पूरा करने के लिए, इनकी जरूरत नहीं है, उस समय हम टाल सकते हैं, नहीं तो बाबा टचिंग करा देगा, तब तो बाबा टचिंग करा देगा कि बच्चे इनकी जरूरत है, उनको सेवा करो तुम, इसलिए टाइम देना है हमको, टाइम के बाउंडेज में हमें नहीं रहना, बाउंडेज से पार जाना है। जैसे बाबा क्या कहते हैं, बतन में आओ, बतन में आपके लिए टाइम की कोई वो नहीं, लिमिट नहीं, कभी भी आ सकते कितना समय भी, ऐसे टाइम के लिमिट से हमें बाहर जाना है। ई अर्थात हम अपने सुधरने के लिए कर, ई अर्थात इकोनॉमिकल होना चाहिए, आर्थिक सबलता भी चाहिए। इसमें दो प्रकार की आर्थिक है, एक तो स्थूल धन और दूसरा ज्ञान धन भी हमारे पास हो, जिसे ज्ञान धन से उनके जीवन की जो परिस्थिति है, विघ्न है, मन के हुए उलझन को हम समाप्त कर सकते हैं, और स्थूल धन होगा तो कभी उनको छोटों को जरूरत है तो उनको हम मदद कर सकते हैं। यन अर्थात जीवन में न्यूनेस होना चाहिए, नवीनता हो, पालना देने में नवीनता हो, एक जैसे ही नहीं, पुरानी चाल और पुरानी ढाल से काम नहीं चलेगा, नई नई तरीकों से उनको हम पालना दे सकते हैं। टोली से पालना नहीं होती है, मीठी बोली से पालना होती है, भावना मीठी होनी चाहिए। हाँ, उसके आगे है ए अर्थात एडजस्टेबल नेचर, एडजस्ट करने की क्षमता हो। ये नहीं कड़क संस्कार, बांस जैसे कड़क लठ जैसे नहीं, फोल्ड एकदम फ्लेक्सिबल हो, तभी हम पालना दे सकते हैं और तभी हमारी पालना का उनको लाभ भी मिलेगा और असर भी पड़ेगा। इसलिए हमारे दीदी बोलती थी झुक झुक मरमर सिख सिख, झुकने का मरने का और सीखने का हमारी आदत होना चाहिए। आगे है यन, निमित्त भाव हो हमारे जीवन में। अगर हम निमित्त भाव से नहीं करते, मान शान के पीछे करते हैं, नाम ऊंचा करने के लिए करते, दिखावा के लिए करते, बड़ों के आगे आगे करते रहते हैं, छोटों के आगे करते, लेकिन बड़ों को दिखाने के लिए छोटों को पालना करते हैं, तो फिर भले उनको पालना मिल जाएगी बाबा के द्वारा, लेकिन आपको प्राप्ति जीरो हो जाएगा। इसीलिए जो भी हम करते हैं निमित्त भाव से करना है, निमित्त भाव हो, चित्त निर्मल हो, वाणी मधुर हो। निमित्त भाव, निर्मल वाणी, चित्त निर्माण चित्त होनी चाहिए हमारी, तभी लेने वालों को भी फायदा तो करने वालों की फायदा। बीच में आ गया क्लोजनेस, समीप का संबंध बना के रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमसे हमको देखते न्यारा प्यारापन का बैलेंस बाबा ने बोला है, क्लोजनेस बना के रखना है। ऐसे नहीं हम ऑफिशियल हो जो हमको देख के थोड़ा भयभीत हो जाए, वो भयभीत नहीं हो, क्योंकि हमारे दैवी परिवार है, क्योंकि 2500 वर्ष हमें संस्कारों की रास करना है, साथ में रहना है, साथ में पुष्पक विमान में घूमना है, साथ में भोजन करना है, पिकनिक करना है, सब कुछ करना है। चार पुष्पक विमान दादियां बोल दी थी, बहुत सारा लगेगा आपके बाहर। सबसे लास्ट है ई, ई अर्थात इक्वलिटी, समानता हो, संभाव हो, हर एक के प्रति एक जैसी भावना हो, कोई किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं, सबको एक जैसे, सबको एक जैसे करेंगे, जैसे बाबा सबको वरदान एक जैसे देते, शक्ति एक जैसे देते, सूर्य सबके लिए रोशनी एक जैसे देते, चंद्रमा शीतलता सबको एक जैसी ले देती, आकाश छाया सबको एक जैसे देते, ऐसे ही हमें सबको एक जैसे पालना करनी है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं करना है। अगर हम इन सब बातों को ध्यान रख के अगर हम पालना देते हैं, साथ में इस बात को ध्यान रखना है लास्ट में कि ये सब करते हुए भी व्यक्ति को अपने में लटकाना नहीं है, अपने में अटकाना नहीं है, अपने में फंसाना नहीं, सदा दाता देने वाले की तरफ इशारा करना है। इस बात को हमें सदा ध्यान रखना है। लास्ट में जब ये टॉपिक मिली तो मुझे एक दो पॉइंट लाइन याद आया, तो मैं आप सबको सुना देता हूं। बाबा देते हम बच्चों को अमृत वेले वरदान, बाबा हम बच्चों को अमृत वेले वरदान देते, हमें देने हैं छोटों को समय निकाल करके सकाश, सकाश देने से माया को मिलेगी सदा के लिए अवकाश। प्रकृति के तत्व और दुखी आसंत आत्मा लगाए बैठी है इस बातों के लिए आस, प्रकृति के तत्व और दुखी आसंत आत्मा इस बात के लिए लगाए बैठे हैं आस, इसीलिए हे योगी पालना देने वाले करते रहो कुछ न कुछ प्रयास। ओम शांति। नहीं वो उनके तकदीर में नहीं लेने का, एक बात। दूसरी बात, नहीं हम महान, अगर हम हर प्रयास करते हुए अगर वो नहीं ले रहा है माना उनके तकदीर में नहीं है। अगर हम अच्छा करते जाते, हमने कई बार देखा है वो भले कुछ भी सोचे, हम अच्छा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो उनको असर आता है। हमने देखा है, बहुतों को देखा है, ये सब बातें आती रहती है सेवा के क्षेत्र। हम अगर हम अच्छा करते रहते करते रहते करते रहते व्यक्ति के लिए ना, तो एक न दिन वो आके झुकता है, लेता है। झुकने का नहीं, पालना देने का लक्ष्य हो, झुकाने का नहीं हो, लेकिन वो व्यक्ति पहले समझ में नहीं आता है उनको, लेकिन धीरे 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 लेते 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 टाइम व्यक्ति को नहीं मिलता है सूर्य की रोशनी में जाने का। जब डॉक्टर बोलते कैल्शियम कम है जाना ही होगा, तो मजबूरी से जाता है। तो हम करते रहे, सूर्य रोशनी देता रहे देता रहे देता रहे, वो जब जरूरत होगी तो अपने आप आएंगा लेने के लिए। ओम शांति।